ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। सबसे पहले आज के इस सुंदर सत्र में हम सब के प्राणेश्वर बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हमारी सभी पूर्वज आत्माएं उनका स्मरण करेंगे। मन ही मन बाबा की उपस्थिति का एहसास करेंगे और जैसे कि सैलू भाई ने बताया कि हमारे तुलसी भाई जी बहुत पुराने बाबा के बच्चे लेकिन रहते बहुत गुप्त। कई बार ऐसा हमें देखने में आता है कि सामने बहुत लोग स्टेज पर प्रत्यक्ष होकर के पाठ बजाते हैं लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं होती है जो पर्दे के पीछे भी बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। ज्यादातर हम मंदिर में ऊपर के स्थान को तो देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं या बड़े बड़े भवन को देखते हैं लेकिन उसके नीचे जो नींव रहता है उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो भट्टी के माध्यम से हम सब अलग अलग सेशन में अलग अलग तरीके से ज्ञान योग से अपने आप को परिपूर्ण कर ही रहे हैं। आज के सुंदर सत्र में हम तुलसी भाई जी के माध्यम से हमारी दीदी दादी का अनुभव सुनेंगे। हम सब इस ब्राह्मण परिवार में अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं जो बाप दादा ने हम बच्चों को अपना बनाया। शुरुआत में ब्रह्मा बाबा मातेश्वरी इस यज्ञ को सिंचित किया, आगे बढ़ाया। बाबा जब अव्यक्त हुए तो बाबा ने इस यज्ञ का कारोबार बड़ी दादी और दीदी को दिया और उस महान परंपरा को इन दोनों ने आगे बढ़ाया जिसे बाबा ने स्थापित किया था। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दीदी को नहीं देख पाए होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दादी को नहीं देख पाए होंगे लेकिन सुनने की अभिलाषा सबको रहती है क्योंकि हमारे ये पूर्वज हैं। बाबा के साथ साथ इन सब के शुभ संकल्प से हम बाबा के बने हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उसके पहले थोड़ा सा आप सबसे जानना चाहता हूं, दीदी को किसने किसने देखा है? हाथ उठाए जरा। मनमोहनी दीदी, अच्छा ठीक है। दादी जी को, बड़ी दादी, अच्छा। जिसने दादी को नहीं देख पाया वो जरा हाथ उठाओ, बड़ी दादी को नहीं देख पाए, बहुत है भाई साहब। कई बार हमें लगता है कि हम लोगों ने देखा है तो शायद सबने देखा होगा लेकिन आज हम सब उस सीन को सामने लाएंगे कैसे दीदी और दादी इस यज्ञ को संचालित करते रहे। आज जो हम विशाल रूप देख रहे हैं बाबा के यज्ञ का, ये पूरा वट वृक्ष देख रहे हैं, जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचा है, इसके पीछे हमारी दादियों की बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ी तपस्या है। तो सर्वप्रथम मैं भाई जी से थोड़ा अपना व्यक्तिगत परिचय जानना चाहता हूं। आपका लौकिक जन्म कहाँ हुआ, आपको ज्ञान कैसे मिला, कहाँ पर मिला, कौन सी बात अच्छी लगी जो ईश्वरीय ज्ञान में आ गए? तुलसी भाई जी।
ओम शांति। मेरा लौकिक नाम तुलसी भाई जैसे बताया, अजमेर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, अजमेर शहर में ही मेरा जन्म हुआ और अजमेर में ही मुझे बाबा का ज्ञान मिला। यूं तो हम माउंट आबू घूमने आए थे तो यहाँ जो म्यूजियम है अपना, सनसेट जाते जाते वो देखा था थोड़ा सा एक चित्र, शिव और शंकर अलग अलग हैं, उसके बाद उसमें रुचि नहीं रही। लेकिन अचानक ही हमारे कजिन ब्रदर को साक्षात्कार हुआ कि आपको ब्रह्मा कुमारी इसमें जाना चाहिए, तो हम दोनों भी सेवा केंद्र पर गए और ज्ञान अच्छा लगा, ज्ञान में सच्चाई महसूस हुई। और मैं ऐसे इलेक्ट्रिशियन और संस्थाओं में भी वैसे कारोबार के हिसाब से जाते थे, लेकिन वहाँ जो सत्संग होता था और उनकी जो प्रैक्टिकल जीवन होती थी उसमें बहुत अंतर होता था। लेकिन यहाँ जब मैं आया तो बाबा का ज्ञान जो बहनें सुनाती थी या जो इवन आने वाले भाई बहने जो थे उनके जीवन में हमें दिखाई दिया, तो पहला तो ये था कि ज्ञान को स्कूल की तरह से, शिक्षा की तरह से दिया जाता है, वो विशेष अच्छा लगा। देन जो भाई बहन आते थे उनके प्रैक्टिकल जीवन में भी वो अप्लाई होते हुए देखा, और जो कोर्स के समय हमें कोर्स कराया जाता था तो अगले दिन पूछा जाता था, समझो आत्मा के बारे में समझाया जाता था, तो अगले दिन जैसे होमवर्क पूछा जाता था ऐसे ये भी पूछा जाता था कि किस प्रकार से आपका वो अनुभूति रहा, आत्मा अनुभूति या तो परमात्मा अनुभूति, या कैसे दिनचर्या रही आपकी। तो मैं कहूँगा कि पहले दिन से ही हम बाबा को पहचान लिए, बाबा के हो गए और हमारे जीवन में वो ज्ञान आना शुरू हो गया। और मुख्य रूप से पवित्रता के कारण जो एक तरह से ओरा दिखता है या तो व्यवहार में जो चमक दिखती है वो हमें उस समय दिखाई दी, जिसने ओरा अट्रैक्शन किया और जिस इस प्रकार बाबा के बन गए।
कौन से सन में आए? और
मैं एक्चुअली 77 में आया, जब हमारी मेरी शरीर की आयु 21 वर्ष थी। मैं पेशे से इलेक्ट्रिशियन था, इलेक्ट्रिक शॉप था
मना। जी 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 जी, तो बहुत पुराने भाई 1970 से बाबा के ज्ञान में आए। और कैसे आए आप सबने सुना कि यहाँ साइट सीन के लिए आए थे, यहाँ बाबा का म्यूजियम है, वहाँ म्यूजियम देखे और उसके बाद प्रेरणा मिली कि ज्ञान को समझने का, जानने का, और उसके बाद ये आध्यात्मिक यात्रा चल पड़ी। जैसे कि हमारा लक्ष्य है भाई जी आज की, हम दीदी और दादी के बारे में ज़्यादा सुनना चाहते हैं, उनका जीवंत वो जीवन हम सब एक प्रैक्टिकल स्वरूप वो हम आपके मुखारविंद से जानेंगे सुनेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ तुलसी भाई जी की आपकी जो पहली मुलाकात है वो दीदी से हुई या दादी से हुई और कहाँ पर हुई?
ऐसे तो अजमेर जैसे यहाँ से थोड़ा सा दूर, जब अपन दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में काफ़ी लंबा स्टॉपेज होता है, वहाँ पर कुछ इंजन बदली होते हैं, तो उस समय भी काफ़ी देर रुकती थी ट्रेन। तो जब मैं 10-15 दिन हुए थे ज्ञान में चलते हुए, तो गुलजार दादी जी दिल्ली से मधुबन की तरफ आ रहे थे, तो वैसे तो उनको पसंद नहीं कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो, लेकिन बहन का इच्छा थी कि हम अच्छे शुरू हैं ज्ञान में चलना, तो हमें लेके गई बहन जो वहाँ सेवा केंद्र की बहन, वहाँ गुलजार दादी से मिलाया। उसके बाद थोड़े दिनों में ही दीदी मनमोहिनी मधुबन से दिल्ली की तरफ जाने वाले थे, तो दीदी मनमोहिनी से मिलना हुआ। और दीदी का जो प्यार देने का तरीका था, रूहानियत का व्यवहार था, या जो दृष्टि थी, विशेष रूप से दृष्टि ने हमें और आकर्षित किया। और इस प्रकार मिलना होता था, मोस्टली दीदी को मिलने ज़्यादा जाते थे हम लोग स्टेशन पे, क्योंकि उनको भोजन वगैरह टाइम पे चाहिए होता था। तो मुझे याद है कि एक बार मैं जॉब करता था, वहाँ से स्टेशन पर आ गया और जो बहनें थी उन्होंने फ़ोन करके पूछा होगा, तो स्टेशन से उनको जवाब मिला कि ये ट्रेन 1 घंटा लेट है। लेकिन ट्रेन लेट नहीं थी इतनी जितनी बताई गई, और हमें अच्छी तरह दीदी से मिलने का मौका मिला। तब इतना तो याद नहीं कि क्या क्या हमारी बातें हुई थी, लेकिन बहुत नज़दीक से हमें दीदी को मिलने का मौका मिला।
तो सबसे पहले आपने गुलजार दादी जी को देखा
जी,
उसके बाद आपकी पहली मुलाकात दीदी से हुई और वो भी रेलवे स्टेशन पर हुई। हम सब जानते हैं पुराने समय हमारी जितनी दादियां हैं वो सब ट्रेनों में ही सफर किया करते थे और जब भी जहां भी स्टेशन से दादियां गुजरती थी वहां के भाई बहन स्टेशन पर आकर के मिला करते थे। तो इस तरह से आपका दादी दीदी से मिलना हुआ। बड़ी दादी से आपका कब मुलाकात हुई?
जब पहली बार मधुबन में आया मैं करीब 3.5 महीने के बाद 18 जनवरी था, अगस्त में हम ज्ञान में आए तो 18 जनवरी के जो नेक्स्ट 18 जनवरी आए थे उस समय मधुबन में आने का मिला। और उस समय क्या होता था कि जब पार्टी आती थी तो पहले मुलाकात दीदी दादी दोनों से होते थे और दो बार मुलाकात होती थी, एक तो आने का टोली मिलता था, एक सौगात के दिन टोली मिलता था दीदी दादी दोनों से, और उस समय दीदी दादी से हमारा परिचय हुआ दादी से।
तो मधुबन में ही बड़ी दादी जी से आपकी मुलाकात हुई। जैसे कि हम सब जानते हैं इस यज्ञ को बड़ी दादी ने और दीदी ने बहुत सुंदर तरीके से सुचारू रूप से चलाए, लेकिन ज्यादातर हम दादी के बारे में बहुत सुनते हैं, दीदी के बारे में चर्चा कम होती है, लेकिन जिन्होंने भी दीदी की पालना ली वो दीदी को नहीं भूल पाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई जी कि यज्ञ में, क्योंकि उस समय तो ज्ञान सरोवर नहीं था, शांतिवन नहीं था, पांडव भवन थे और सेंटर भी बहुत कम थे, तो दीदी की क्या भूमिका रहती थी मधुबन में, दीदी का क्या रोल रहता था?
एक्चुअली वैसे तो कहा जाता है जब सर्वगुण संपन्न 16 क्लास संपन्न, जब संपूर्णता की बात आती है तो श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है, और वो चीज हम बाबा ब्रह्मा बाबा ने मैं ही देखते थे, जिसके कारण अभी तक भी ये कहा जाता है फॉलो फादर, अभी कभी ये नहीं कहा जाता है फॉलो दिस दादी और दैट दादी, तो फॉलो फादर का ही नाम आता है। उसके बाद जितनी भी दीदियां दादियां जो भी थे, तो अभी तो दीदी दादियां मनो कॉमन हो गया शब्द, लेकिन उस समय दीदी मन शब्द अगर मुख से आया मीन्स दीदी मनमोहिनी, दादी शब्द आया मुख से मनी दादी प्रकाशमणि, बाकी कोई सेंटर की बहनों को हम अगर दीदी बोलते थे तो हमें अच्छा नहीं माना जाता था, तो बहन जी या भाई भाई जी बोला जाता था। दीदी शब्द मुख पे आया मीन्स दीदी मनमोहिनी, दादी शब्द मुख पे आया मीन्स दादी प्रकाशमणि। अभी भी आप देखेंगे जब हम केवल दादी बोलते हैं तो दादी प्रकाशमणि का समझा जाता है, और बाकी जो दादियां हैं उनके आगे नाम देते हैं दादी जानकी दादी चंद्रमणि, लेकिन जब दादी जी या दादी बोलते हैं तो दादी प्रकाशमणि ही समझा जाता है। तो जब बाबा अव्यक्त हुए तब दीदी दादी दोनों को ही बाबा ने समान रूप से वास्तव में फूलों के, हाँ एक तरह से फूलों का ताज सर पे रखे उनको निमित्त बनाया था। ऐसा नहीं था कि दीदी इंचार्ज है या दादी इंचार्ज या दादी फर्स्ट है या दीदी फर्स्ट है, ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैनेजमेंट के हिसाब से ऐसा हुआ कि कोई आता था किसी को कुछ पूछ, मान लो मुझे कुछ पूछना है तो मैं दादी के पास भी जाता हूँ, दीदी के पास भी जाता हूँ, कोई और भाई के पास भी जाता हूँ, और जो मुझे सूट करता है तो मैं बोलता हूँ कि मुझे तो दादी ने बोला तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो ये जब बातें आई तब वो ऐसा समझा, थोड़ी प्लानिंग की गई कि किस प्रकार से इस चीज़ को और अच्छा किया जाए। तो जो हमारे आबू रोड स्टेशन है रेलवे स्टेशन, उसके इस साइड में जो दिल्ली साइड में ट्रेन जाती है वो दीदी मनमोहिनी के कनेक्शन में आई, और जो दूसरी साइड में अहमदाबाद साइड में जो ट्रेनें जाती हैं वो दादी प्रकाशमणि जी के मैनेजमेंट के उसमें आई। ऐसे तो दोनों साथ में होते थे, लेकिन जब आपको कोई मर्यादा या कोई प्रश्न पूछा जाता है या तो मैनेजमेंट में क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उनकी एग्रीमेंट भले आपने दीदी से पूछा भी हो, अगर आप बॉम्बे में कुछ करना चाहते हैं भले आपने दीदी से पूछा हो, लेकिन उसका अप्रूवल आपको दादी से लेना कंपलसरी था। इसी प्रकार दिल्ली में अगर आप कुछ करते हैं तो भले दादी जी की प्रेरणा से की गई हो, लेकिन फिर भी दीदी की अप्रूवल लेना आपको कंपलसरी था। तो इस प्रकार से दीदी और दादी ने दोनों एक साथ होते हुए भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, और इसी प्रकार यज्ञ में जो बाहर का कारोबार है मीन्स कहीं मेला करना है, फंक्शन करना है, या कोई वीआईपी को बुलाना है, या यज्ञ का जो गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन रहा उसके लिए निमित्त दादी प्रकाश मणि रहे, और जो इंटरनल मैनेजमेंट है जैसे रोटी कपड़ा मकान कहेंगे साधारण शब्दों में, या यूं कहो लॉजिंग बोर्डिंग, उसका निमित्त दीदी मनमोहिनी रहे। तो यज्ञ में भोजन क्या बनेगा, या कैसे कपड़ा दिया जाएगा, या तो क्या होना चाहिए, क्या इंटरनल इंटीरियर डेकोरेशन होना चाहिए, वो दीदी मनमोहिनी संभालेंगे। जबकि बाहर कोई कलेक्टर आता है तो उनको मिलना है, या तो वो दादी जी संभालेंगे। लेकिन स्पीच किया हुआ एक्चुअली जहाँ तक मुझे मालूम है वो एक ही दादी जी इन्वाइटेड थी इंदौर जोन में। इंदौर में अपने ओम प्रकाश भाई जी थे, उन्होंने एक फंक्शन रखा था तो उन्होंने दादी जी को इन्वाइट किया, लेकिन जो कार्ड छपा है उसमें उन्होंने लिख दिया कि इंस्टीट्यूशन की हेड आने वाले हैं। तो वहाँ से फिर ये हो गया कि दादी प्रकाश मणि हेड हो गई और एडिशनल हेड दीदी मनमोहिनी थे। जब बाबा साकार में थे तो दीदी मनमोहिनी ज़्यादा एक्टिव थी मैनेजमेंट में, और वो यहाँ ही रहते थे तो बाबा के कनेक्शन में रहे, और बाबा क्या चाहते हैं, बाबा की किसके लिए क्या दृष्टिकोण है, वो दीदी को ज़्यादा मालूम होता था। इसलिए सबको ये था कि दीदी हैं, लेकिन जब नाम की बात आई तो
जी, जी जी जी
तो ये फीलिंग, हालांकि कभी उन्होंने हमको नहीं दी या उन्होंने आपस में कभी ये फील नहीं किया कि ये सेकेंड है या ये फर्स्ट है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये माना गया कि दादी प्रकाश मणि हेड है
जी। यज्ञ में हम सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा ने अपने सीट पर बड़ी दादी को बिठाया और उसी दृष्टि से सभी लोग देखा करते थे। जैसे श्री भाई जी ने बताया कि यज्ञ की इंटरनली कारोबार दीदी देखा करती थी और बाहर की सेवा के विस्तार को बड़ी दादी देखती थी, इसलिए बाहर पब्लिक में दादी ज्यादा जाया करती थी। लेकिन चूंकि साकार बाबा के समय साकार बाबा के साथ दीदी रहती थी, इसलिए अंदर का अनुभव दीदी को ज्यादा था। इस तरह से कारोबार यज्ञ का आगे चलता गया, हम सब भी वो 69 के बाद पहुंच जाए कैसे बाबा का कारोबार आगे बढ़ता गया। मैं थोड़ा आपसे और जानना चाहता हूं भाई जी कि मैं तो व्यक्तिगत रूप से हम दीदी को नहीं देख पाए, लेकिन सुनते हैं कि दीदी थोड़ी कड़क थी, थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, और जब भी किसी भाई बहन को मिलती थी तो लव और ला का बहुत बैलेंस रखती थी। आपने कोई ऐसा स्वरूप दीदी का देखा हो या दीदी के साथ का कोई ऐसा अनुभव हो तो आप भाई बहनों को सुना दें।
ऐसे तो जब मर्यादाओं की या प्रिंसिपल की बात आती है तो कभी कभी हमको कोई पूछते हैं कि जो आपके फाउंडिंग फादर रहे, क्योंकि संत दुनिया में क्या होता है कि जो जितना प्रिंसिपल में जो दृढ़ता होती है, जितना फाउंडिंग फादर्स में रहती है, तो जेनरेशन के अनुसार वो कम होती जाती है। तो वो चीज़ होती है, इसको मजबूत रखने के लिए मैं समझता हूँ दीदी का जो प्रिंसिपल सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। बाकी दीदी शक्ति स्वरूपा थी, तो शक्ति स्वरूपा में ये नहीं आता कि दीदी स्ट्रिक्ट थी। वास्तव में शक्तियों में अष्ट शक्तियाँ तो आप सबने अपने कोर्स में सुनी होंगी या अभी भी आपस में रिवाइज करते होंगे, तो आठों ही शक्तियाँ दीदी में मैंने महसूस की। दीदी को फ्रेंड्स बनाने में भी बहुत अच्छे आता था, जो एक बार दीदी के कनेक्शन में आता था तो दीदी का ही बन जाता था। मैं ये कहूँगा बहुत सारे आपने गायत्री मोदी जी का उदाहरण सुना होगा कि कैसे वो एक ही बार में कनेक्शन दीदी मनमोहिनी के कनेक्शन में आए और वो जैसे इतनी बड़ी मानो पैसे वाले या जो भी हो उनका लौकिकता थी उनको छोड़ के दीदी को दिए, उन्होंने सब कुछ जैसे कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण थे जो दीदी जो सखी बनाने में होशियार थे ऐसा माना जाता है। और दीदी का प्यार देने का तरीका, खेलने का तरीका, नेचुरल रहने का तरीका भी बहुत अच्छा था। मैं उस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ। हम लोग एक बार सिरोही से लौट रहे थे, बस भर के गए थे हम लोग सिरोही। हालांकि सिरोही जाने का भी कारण ऐसा था कि हम लोग पीस पार्क गए थे घूमने के लिए। उस समय पीस पार्क शब्द नहीं था, ओरिया ग्राउंड था। उस समय हम लोगों ने वो जमीन खरीदी नहीं थी, तो वहां घूमने गए थे, वहां से सीधा सिरोही गए, दीदी भी थे दादी भी थे। और वहां से जब वापस लौटते समय एक पहाड़ी जैसा था, टेकरी जैसा, तो वहां रुक गए बस थोड़ा, और थोड़ा सा बस को भी रेस्ट देना था। इस बीच में मुझे याद है कि दीदी ने कहा अपन यहाँ कुर्सी कुर्सी खेलेंगे, कुर्सी गेम होता है ना, चेस गेम, वो खेलेंगे। तो मुझे लगा यहाँ कुर्सी तो कोई दिखाई नहीं दे रही तो यहाँ कैसे कुर्सी खेलेंगे। तो दीदी ने 10 जनों को खड़ा किया लाइन में, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे, और एक का हाथ ऐसे इस तरफ रहा और दूसरे का इस तरफ ऐसे ऐसे करके खड़ा रहने का, और जो दौड़ने वाले होंगे उनको इसमें अपनी बाजू इसमें डालना है। मान लो भाई पीछे से आएगा जो, यहाँ बाजू डालेगा तो जो रह जाएगा वो आउट। तो इस प्रकार से दीदी गेम खेलने में भी, मानो एंटरटेन करने में भी अच्छे थे। और दूसरी दीदी का एक फेवरेट गेम था, जो भी आता था तो कॉइन होते थे उस समय, तो कॉइन यहाँ दबा के तो बोलते अच्छा गिराओ, तो पहली बार में तो व्यक्ति गिरा देता था ऐसे करके, दूसरी बार दीदी इतना जोर से दबाते थे, फिर भी ऐसे ऐसे करता व्यक्ति करते करता गिरता नहीं था। वास्तव में दीदी क्या करते, इतना जोर से दबा के उस कॉइन को निकाल लेते थे अपने पास।
अच्छा,
वो कॉइन होता ही नहीं था तो गिरेगा क्या लेकिन वो इतना जोर से दबता था तो व्यक्ति को लगता था कॉइन लगा हुआ है, तो ऐसा ऐसा करता रहता था, गिरता ही नहीं था। तो दीदी बोलते देखा मैंने इतना जोर से चिपकाया तुम गिरा नहीं पाया, वास्तव में वो होता ही नहीं था। तो इस प्रकार दीदी एंटरटेन करने में भी अच्छे थे। और जहाँ तक प्रिंसिपल की बात है तो ये है ना कि अगर आप कोई इलेक्ट्रेट प्राइम मिनिस्टर के सामने जाओगे और चीफ जस्ट के सामने जाओगे थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है। तो दीदी ये मर्यादाओं में ऑफकोर्स स्ट्रिक्ट थी, इन द सेंस कि उनको पता चल जाता था हमारे चलन से ही कि हमने क्या गलत किया है या कुछ हम एबनॉर्मल कर रहे हैं। समझो ड्रेस हमें यहाँ सिलाई करके मिलती थी, उस समय तो थोड़ा सा चौड़े पजामा चौड़ा पांचे वाला होता था, तो अगर किसी ने कम चौड़ा या पेंट पहना हुआ है, पेंट टाइप पजामा ही पहना हुआ है, तो दीदी को पता चल जाता है दूर से कि ये तो यहाँ का नहीं है, मधुबन का दिया हुआ कपड़ा नहीं है। तो तुरंत बुला के पूछ लेती थी कि ये कहाँ से लाया, कौन दिया तुमको। तो इस प्रकार से दीदी की धारणा इस भाव से थी कि हमें किसी मनुष्य कोई भी देहदारी की याद न आए, हम कितने भी नजदीक वाले हों तो उनको ये रहता था किसी देहदारी की याद न आए। जैसे मान लो मैं जब सेवा केंद्र से रहने के बाद जब यहाँ आया और उसके बाद जब पहली बार सेवा केंद्र पे गया तो ऑफकोर्स जो वहाँ निमित्त बहन थे उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट दिया, डायरी पेन दिया या कुछ और भी दिया, तो उन्होंने दीदी ने वो मुझे रखने नहीं दिया, बोला तुम्हें डायरी चाहिए तो मैं तुमको बढ़िया डायरी देती हूँ, इससे भी अच्छी डायरी। लेकिन जो वहां से मिली थी चीजें वो उन्होंने मुझे रखने नहीं दिया अपने पास कि तुमको फिर उस बहन की याद आएगी। तो ये इस चीज में थोड़ा सा दृढ़ता करने में दीदी पक्के थे। मान लो हमारे यहाँ भाई लोग, हम मधुबनी वासी भाई बहन भाई थे, बहनों की छपते भाई थे, जो कटिंग करने के लिए यहाँ एक हजाम आता था और घर के बाहर ने आप जैसे कह रहे हैं उस अनुसार मैं बता रहा हूँ, तो कोई अगर बाहर जाके कटिंग करवा के आएगा तो थोड़ा सा वो उसकी कटिंग अपने स्टाइल की होती थी, और जो यहाँ हजाम आके कटिंग करता था उसकी कटिंग अपने स्टाइल से होती थी। तो दीदी को पहले दिन ही पता चल जाएगा निश्चित है, तो उनको बुला के बोल देंगे कि ये मर्यादा के विरुद्ध है, जो भी जो जो औरों ने करा है, जो सबका सबके लिए है वो आपके लिए भी है। इस प्रकार कोई बहन अगर कोई स्पेशल फॉल लगा के साड़ी पहन के आई है तो पकड़ में आ जाते थे, तो तुरंत ही दीदी उनको बुला के इस प्रकार कि हो सकता है तुम्हारे पास पैसा हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स पैसे वाले हों, लेकिन जो यज्ञ सिस्टम है, जो यज्ञ के बच्चे हैं उनको सबको एक जैसा ही रहना है, तो उसमें उनकी थोड़ा सा
जी 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 जी। तो दीदी की पूरी शिक्षाओं को अगर हम सार में समझें तो दीदी बहुत मर्यादित रहती थी और सबको मर्यादा सिखाती थी, और इस तरह से दीदी और दादी का दोनों का बैलेंस रहता था। थोड़ी सी एक जानने की जिज्ञासा है तुलसी भाई जी की, बड़ी दादी को हमने देखा जब तक स्वस्थ थी दादी प्रतिदिन मुरली सुनाया करती थी, चाहे पांडव वन में देखा चाहे शांति वन में देखा। दादी के रहते क्या दीदी भी मुरली सुनाती थी?
नहीं, एक्चुअली मधुबन में दीदी ने मुरली नहीं सुनाया, बाहर में कोलकाता वगैरह गए तो वहाँ उन्होंने सुनाया, लेकिन मधुबन में दीदी मेरे सामने कभी मुरली नहीं सुनाया। जब दादी बाहर जाते थे तो मुझे याद है, एक्चुअली जब दादी के समय मैं ही एक दिन पहले दादी के रूम में मुरली रख के आता था अगले दिन के लिए, तो एक दिन दादी कहीं बाहर गए थे तो मुझे लगा कि मनोहर दादी मुरली सुनाएंगे, तो मैं वो मुरली मनोहर दादी के रूम में रख के आ गया। तो दीदी ने बुलाया कि तो किसको दिया है मुरली, तो मैं बोला कि मनोहर दादी के रूम में रख के आया हूँ मैं, हालांकि मनोहर दादी थे नहीं तो उनके वहाँ रख के आया हूँ। तो उन्होंने बोला किससे पूछ के मनोहर दादी के रूम में रखा? तो मैंने कहा, मैंने ऐसा समझा कि हमेशा जब दादी जाते हैं तो मनोहर दादी मुरली सुनाते हैं, तो अधिकतर मनोहर दादी सुनाते हैं, तो इसलिए मैंने तो वहां से शायद दीदी भी ये कहने वाली थी कि वहां ही रखना है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से रख के आया उनसे पूछे बिना, तो मुझे वो मुरली वापस वहां से उठा के रतनमणि दादी के रूम में रख के आना पड़ा, ताकि रतनमणि। तो जब भी दादी बाहर जाते थे कहीं तो दीदी से पूछ के ही दीदी मुरली कौन सुनाएगा, तो उनको मुरली वो देना होता था। तो हो सकता अगर दादी के बाहर जाने के बाद अगर अपने दीदी चंद्रमणि थे यहाँ होते थे खास, कभी बाहर लंबे समय के लिए दादी जाने वाली है तो मोस्टली निर्मल चंदा दादी या तो दादी चंद्रमणि जी यहाँ रहते थे, तो उन दिनों में तो मोस्टली उनको ही सुनानी होती थी। लेकिन अगर दोनों भी नहीं या दादी कहीं एक दिन के लिए बाहर गए हैं तो इन दोनों में से किसी के पास
बड़ी दादी जब बाहर होती थी तो दीदी का डायरेक्शन होता।
लेकिन मुरली की पॉइंट्स निकालने में या मुरली की पॉइंट्स को मनन मंथन करने की में दीदी का बहुत ज्यादा रोल रहा। आपने राजू भाई के अनुभव सुने होंगे मुझसे, तो उन्होंने दीदी ने उनको सिखाया कि कैसे क्वेश्चन आंसर निकालना होता है, और कभी राजू भाई नहीं होते थे तो एक्चुअली मुझे सिंधी लिखना पढ़ना आता था, तो दीदी ने कहा कि तुम कभी अगर लिख के देगा मुझे तो मैं जो जो सिंधी दादियां हैं उनको मैं भेजूंगी। तो वो उन्होंने दीदी ने बताया कि कैसे पॉइंट्स निकालने होते हैं, जैसे दादी मुरली सुनाने से पहले कुछ सुनाते हैं, मुरली में से ही सुनाते हैं उन दिनों। एक्चुअली आज जो मुरली में सार आता है, सार वरदान आता है, वो पहले नहीं होता था दीदी के समय में। तो दादी जो सुनाते हैं पहले मुरली सुनाने से पहले, इसका मतलब वो हाईलाइटेड पॉइंट है उस मुरली में से, तो वो हम थोड़ा सा लिख लेते थे, फिर मुरली में वो कहाँ आते हैं वो उस अनुसार फिर वापस फेयर करके लिखते थे। तो पांच का
ओम शांति। हम सब बाबा के इस प्रभु लीला में सहभागी रहे हैं, और कैसे कैसे ये भगवान की लीला चलती रही और किस तरह से दादियों ने महान पार्ट बजाया, उसका सजीव चित्रण भाई साहब हम सबके सामने रख रहे हैं। मुझे आपसे और एक चीज जानने की जिज्ञासा है तुलसी भाई जी, कि जैसे दादी और दीदी के लिए कहावत बहुत प्रचलन है कि दोनों की शरीर दो थे लेकिन आत्मा एक थी, ऐसी क्या बात थी जो ये बात बहुत प्रचलन में यज्ञ में है? इतना प्यार था दोनों के बीच में, और इसके कारण ही मैं समझता हूँ कि ये हम सब सुनते हैं जब भी बड़ों से दादी और दीदी के बारे में सुनते हैं, या दादी के बारे में हम सुनते थे, बड़ी दादी के मुख से भी कई बार हम सुनते थे कि जब भी दीदी को याद करती थी तो दीदी के लिए कहती थी कि हम दो शरीर लेकिन आत्मा एक थी, ये क्यों प्रचलन में आया?
वैसे तो बाबा की जो पालना रही दोनों के लिए समान रही, और दोनों ही बाबा के ही कदमों पर चलाने के लिए या चलने के लिए तैयार थे, तो फिर दोनों में समानता आना स्वाभाविक है। कई बार हम सेंटर पे भी रहते हैं तो मान लो मेरे से पहले जो भाई सेंटर पे रहता था वो जब मधुबन में आ गया तो मैं सेंटर पे रहना शुरू किया, तो बहुत जो कभी कभी आने वाले थे उनको ये नहीं पता चला कि ये पहला वाला है या दूसरा वाला है, वो मुझे ही बोलते हैं अशोक भाई ऐसा करो, ऐसा होना ऐसा है, या हमें ऐसी चीज चाहिए, ऐसा सेवा चाहिए। तो क्योंकि बाबा ने जो प्यार दिया, बाबा ने जो शिक्षाएं दी, बाबा ने जो पद चिन्ह पे चलने का सिखाया, वो दोनों को ही या सबको ही एक साथ एक जैसा सिखाया, तो इस कारण से भी मैं समझता हूँ काफी समानता रही। लेकिन उसकी दूसरी बात यह है कि दोनों का किसी के पर्सनल मोह या पर्सनल अटेंशन नहीं था कि ये, कई बार होता है ना कि मेरे सेंटर का है या वो उसके सेंटर का है, दोनों में ये चीज नहीं थी। मतलब मैं दीदी के कनेक्शन वाले आया था, और जब यहाँ आया तो जब मुझे मैं जो सेवाएं मिली वो दादी के कनेक्शन वाली मिली, तो कई बार हंसी में बोल देते अच्छा तुम तो दीदी का है ना, तुम दीदी के पास जाओ के पूछ लो, या तो दीदी बोलेगी तुम तो दादी के सेवाओं में समर्पित है ना, तो दादी से पूछ लो। हालांकि इस बीच में वापस में बात भी कर लेते थे, तो दोनों की समानता ही होती थी। और वैसे भी संस्कारों में या तो लाइकिंग्स में, हॉबीज में, दोनों में समानता रही, काफी हद तक समानता रही। तो कुछ बातों में अलग मत होते हुए भी होती भी होगी तो, लेकिन पब्लिक में नहीं आती थी वो बात, वो आपस में जब बात करते तो एक मत होके ही पब्लिक के सामने आती थी बातें। इसलिए दादी दीदी, दादी को पूछा तो लगभग दीदी भी वही बोलेगी, या भले ही आपको भेजे वहां उनसे भी पूछ लो या तुम उसके कनेक्शन वाला है, लेकिन लगभग जो रेस्पॉन्स होता था दोनों का लगभग समान होता था। और अगर उनको एडजस्ट भी करना पड़ता था तो कभी ऐसा नहीं होता था कि वो मजबूरी में एडजस्ट करें दूसरे एक दूसरे को, तो एक ने कहा ना हाँ तो दूसरे ने माना, मतलब उस कारण से जन सामान्य को पता नहीं चलता था कि दीदी ये नहीं चाहती या दादी ये नहीं चाहती, जब बात आती थी तो सेम।
तो किसी भी परिवार को भली भांति चलाने के लिए बड़ों का आपसी प्यार बहुत आवश्यक होता
है। ये चीज बहुत कूट कूट के हमारे यज्ञ में वो
जी 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 जो आपसे हम सबको जानने को मिल रहा है कि दादियों में आपसी प्यार बहुत था, आपसी स्नेह बहुत था, मेरापन या मैंपन नहीं होता था, बल्कि सभी बाबा के बच्चे हैं, सभी जो भी सेवा केंद्र के हैं सभी बाबा के हैं और सभी अपने हैं, इस भाव से यज्ञ को आगे बढ़ाया। जैसे बाबा के बच्चे जब यहाँ बाबा घर में आते हैं तो अपनापन तो फील होता ही है, और उस समय भी होता रहा, लेकिन दादियों के समय या दीदियों के समय कोई नान भी के आते थे या कोई वीआईपी आते थे, ऐसा क्या दादी के अंदर एक जादू मंत्र जैसे होता था कि वो वीआईपी लोग भी दादी का हो जाते थे, या आज तक भी जिसने भी दीदी और दादी से मिले वो भले ज्ञान में नहीं चलते हैं लेकिन दादियों को नहीं भूल पाते हैं, क्या विशेषताएं थी?
बाबा ने जो उनको प्यार दिया, बाबा ने जो चलाया जिस प्रकार से, उस अनुसार ऐसा लगता था कि उन्होंने अपने लिए तो जो उनको चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस तृप्त हैं। जैसे जैसे कोई बिजनेसमैन होता है ना, तो कोई चीज खरीदता है तो जितने में उसने खरीदी उसका कई गुना उसको ऑलरेडी मिल चुका हो, तो उसके बाद उसको क्या लगता है जितना जो मटेरियल का जितना भी मिले जैसे भी मिले तो जैसे अपना ही है। तो बाबा ने इतना प्यार उनको दिया या जो भी शिक्षाएं दी या जो अपने अनुभवों से इतना तृप्त करा दिया, उसके बाद दीदी दादी या और भी जो थे उनको ये रहता था कि अब देना है, तो अभी किसी से लेना नहीं है देना ही है, तो देने की शुभ भावना उन दोनों में रही। चाहे वो अगर किसी ने का धन सफल भी हुआ तो उनके भाग्य बनाने के लिए हो रहा है, अगर कोई हमारे पास गेस्ट आया भी है तो बाबा ने उसको हमारे तक इसलिए भेजा था कि हम उसका भाग्य बना सकें, या हमारे मुख से बाबा ऐसा निकलवाए जो उसके कल्याण के लिए हो। हमारा जीवन निस्वार्थ है, हमें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, ये दोनों में ही एक तरह से तृप्त, दोनों कूट कूट के भरे हुए थे, इन द सेंस खुद तृप्त थे, भरपूर थे, उनको खुद के लिए किसी की इच्छा नहीं थी। जिस कारण से क्या होता था कि केवल वीआईपी की बात नहीं, मान लो मैं उदाहरण सुना कि जब हमें मधुबन निवासियों को कुछ फल मिलता है खाने को, समझो मैंगो का सीजन है, मैंगो का ट्रक भर के आया है और हम मधुबन निवासियों को बांटा जा रहा है, तो उस समय दादी को यहाँ के जो लोकल ऑफिसर्स थे या जो जो डॉक्टर्स थे पालनपुर के या अहमदाबाद के, जिनके पास हम जाके उनसे सेवाएं लेके आते थे, तो दादी को वो भी याद आते थे। हम मधुबन निवासियों को अगर ग्रेप्स मिलते हैं तो दादी को रहता था कि हर सेंटर वाले को मिलने चाहिए। मुझे याद है एक बार दादी ने मम्मा दिवस के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पांडवों में ज्ञान सरोवर में दोनों जगह ग्रेप्स अच्छे निकले थे,
अंगूर तो
वो अंगूर सेवा केंद्र पे एक एक जिज्ञासु तक पहुंचे, ये दादी की इच्छा थी। और मधुबन निवासियों को दादी ने भेजा ग्रेप्स लेके, कहीं 100 कहीं 150 ग्रेप्स लेके वो सेंटर पर गए, वो स्टूडेंट्स को बांटने के लिए मधुबन निवासी गए। तो भले ना एक मिला हो एक जिज्ञासु को, लेकिन दादी ने भेजा है इसकी भावनाएं कितनी होती है। तो दादी यहाँ केवल हम लोगों तक नहीं सीमित थी, जो गेस्ट आते थे, VIPs आते थे हमारे पास जो कनेक्टेड थे, और जो इवन हमारे पास जो सर्वेंट्स हैं यहाँ आप देखते हैं, उनको अभी तक भी दादी ने जो शुरू किया, दीदी ने जो शुरू किया, अभी तक भी उनको साल में एक बार गिफ्ट मिलता ही है, है ना। हमें कपड़े मिलते हैं तो हमारे पास जो उस समय जमादार थे, स्वीपर थे, वो उनको भी दादी ख्याल रखते थे। या दादियाँ जब हमें, मान लो दादी के साथ में जा रहा हूँ, दादी बोली सुनाने के लिए जा रहे हैं, तो मोस्टली अपने बाबा के बच्चे तो इस पहुँच जाते थे क्लास में, लेकिन जो उस समय स्वीपर सफाई कर रहे होते थे, दादी उनको भी हाथ हिला के पूछती ठीक हो। मीन्स दादी का जो फीलिंग था, उनके प्रति प्यार जताने का तरीका था, उस कारण से क्या होता था कि वो ऑटोमेटिकली दादियों की तरफ आकर्षित होते थे। उनको लगता था कि दादी केवल ब्रह्मा कुमारी की दादी नहीं है, हमारी भी दादी है। उनके घर में कोई बहू आएगी तो दादी को मिलाने के लिए लेके आएंगे। और ऐसे ही दीदी का भी प्यार उतना ही था, जो भी चाहे गेस्ट आते थे, समझो राजयोग शिविर में कोई आया है और दीदी उनको इतना प्यार देती थी, फिर पूछती थी अच्छा तुमको तो सेंटर पे रोज जाना ही है। तो मुझे याद है कि वकील साहब आते थे दिल्ली से, और वो शिविर में आए थे फर्स्ट टाइम, और दीदी ने उनसे प्रॉमिस लिया कि आप सेंटर पे एक बार जाओगे रोज, और अगर आप जिस दिन नहीं जाओगे तो फोन करके बाबा की मूल्य की एक पॉइंट पूछोगे, ये प्रॉमिस करके जाओ। तो लास्ट मोमेंट तक जब तक वो थे, आइदर पांडवन करोलबाग सेंटर पे जाते थे या तो फोन करके पूछ लेते थे। और बहनें भी, क्योंकि दीदी ने उनको बोला है तो फोन पे उनको मूल्य की पॉइंट सुनाने के लिए बाध्य थी, तो रोज वो मूल्य की पॉइंट जरूर सुनते थे। तो जितना प्यार उतना अधिकार, और उतना ही सामने वाले की उन्नति की भावना, वो बाबा का बनना चाहिए, और नहीं भी बनना है तो सहयोगी तो बनना ही चाहिए।
जी जी, बहुत सुंदर, इतना सुंदर तरीके से आप बता रहे हैं भाई साहब। एक चीज और आपसे जानने की जिज्ञासा है, हम सब से जीवन में कभी न कभी भूलें हो जाती है, गलतियां होती है, कहते हैं मनुष्य गलतियों का पुतला है, हमेशा कभी भी गलती ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, और मधुबन में मधुबन निवासियों से भी कोई गलती ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता। कोई उस समय बाबा के बच्चे, समर्पित बच्चे, किसी से कुछ भूल होती हो, कोई अवज्ञा हो जाती हो, दीदी दादी की पहली प्रतिक्रिया क्या होती थी?
मोस्टली तो ऐसा होता था कि समझो मेरी किसी भाई से कुछ किसी भी कारण से अनबन हुई, या तो समझो मैंने किसी भाई ने जाके दीदी को बोला या दादी को बोला कि दादी तुलसी भाई ने मेरे लिए ऐसा बोला, तो उनको सुन लेंगी पूरी, और बाद में मुझे बुलाया जाता, तुलसी भाई आया है बैठो तुलसी, तो मैं तो पहला तो उस व्यक्ति को वहाँ देखूंगा तो मैं तुरंत मुझे फ्लैशबैक हो जाएगा कि क्या हुआ होगा या क्यों आया होगा ये। और उसमें ही पहले कई बार तो ऐसा होता था कि व्यक्ति सामने से पहुंचते ही सॉरी करना शुरू कर देता था, क्योंकि निश्चित है कि दीदी दादी का प्यार इतना था कि हम झूठ नहीं बोल पाते थे। हमारे से कितनी भी गलती हुई हो, कितनी भी बड़ी या छोटी गलती किसी से भी हुई हो, तो झूठ नहीं बोल पाते थे। तो जो भाई मेरी कंप्लेन लेके गया तो दीदी उनको बोलेंगी अच्छा तुलसी आया है, तुम जो मुझे सुना रहे थे ना वो रिपीट करो थोड़ा। तो अगर उसने झूठ बोला है दीदी के सामने और मेरी ऐसी गलती थी नहीं, फिर भी उसने बताया है, तो वो बोल नहीं पाता था। और अगर वो बोल रहा है तो ऑटोमेटिकली मुझे रियलाइज हो चुका होगा तब तक जब तक वो बोलना पूरा करे। तो वहाँ ही हम लोग आपस में सॉरी एक दूसरे को करके वापस निकलते थे। तो एक मनोम दादी दीदी बोलते थे अच्छा टोली लो एक दूसरे को खिलाओ, तो एक दूसरे को टोली खिला के मोस्टली बाहर निकलते थे। कभी किसी की इंडिविजुअल गलती होती या कुछ ऐसा होता है तो मोस्टली हमारे लिए सजा क्या होती थी कि जितनी बड़ी गलती है उतने घंटे बाबा के रूम में बैठना। तो थोड़ा सा हालांकि बाबा के रूम में बैठना तो एक तरह से सौभाग्य है, लेकिन कोई लंबा समय बैठता तो औरों का अटेंशन जाता था, अच्छा ये क्या बात है आज
सजा मिला है
तो उस चीज की फील होता था। हालांकि बैठना बाबा के कमर में तो अच्छा है ना, चलो योगी कर रहे हैं ना हम तो, लेकिन उसमें थोड़ा दोनों बातें हो जाती थी। एक तो बाबा जो लोगों के जो दृष्टिकोण है उससे थोड़ा हमें रियलाइज भी हो जाता था और बाबा से हमें परिवर्तन की शक्ति भी मिल जाती थी। तो मोस्टली ये बातें होती थी जो सजाओं में।
जी 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 जी, बहुत सुंदर। आप लोगों को अंदर घर की बात पता चल रहा है ना, मधुबन में भी कुछ न कुछ बातें होती है। जैसे आपके अपने परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है। अभी मैं दीदी का प्रश्न उत्तर सुन रहा था आने से पहले कि घर में एक छोटा बच्चा और वो ज्ञान में चलता है और माँ बाप उनके सामने लड़ाई करते हैं, है ना, तो वो बच्चा की प्रतिक्रिया क्या होती है। ऐसे ही हमको सीखने को मिलता है परिवार में किस तरह से अगर किसी से कोई गलती भी हो जाए। आप लोगों के घर में बहू है, बेटा है, नाती पोता है, अगर उनसे कोई गलती हो जाती, भूल हो जाती है तो परिवार की बात को परिवार तक ही रखें, घर तक ही रखें और आपस में सुधार कर दें। इस तरह से दीदी दादियों ने सबको सिखाया और आगे बढ़ाया। तो बाबा का ये सुंदर बगीचा फूल आज ऐसे ही नहीं महक रहा है, इन सब के त्याग तपस्या से और इनकी शिक्षाओं से ये सुंदर मधुबन है।
कभी ऐसा होता था कि मान लो जी समझो कोई बाहर से बहने आई हैं, टीचर्स बहने हैं या तो कोई ऐसे हैं, तो कभी मान लो मेरी कंप्लेंट गई तो दादी इशारे से बोल देती तुम सॉरी कर लो इसको जी। तो सॉरी कर लेते थे। बाद में दादी बोलते थे कि देखो वो मधुबन से जाएगी तो वहाँ अगर डिस्टर्ब होके जाएगी तो सेंटर को डिस्टर्ब करेगी या वहाँ मधुबन से ऐसा इम्प्रेशन लेके जाएगी, हम तो आपस में ही है ना, भले ना गलती उसकी थी लेकिन मैंने तुमको बोला तो क्योंकि हम तो आपस में यहाँ एक ही है ना, एक ही घर में है तो हम तो एक ही हो जाएंगे शाम तक, लेकिन वो संतुष्ट होके जाए ये लक्ष्य दीदियों का रहा।
कितनी सुंदर बात कि आपस में अगर दो भाइयों का अनबन है तो एक दूसरे को टोली खिला दे, एक दूसरे से गले लगवा दे और कई बार आपस में कुछ मन मुटाव के साथ बड़ों के पास गए लेकिन जब निकले तो मुस्कुराते हुए निकले और वही बात खत्म हो जाया करती थी। भाई साहब मुझे एक और चीज जानना है कि बड़ी दादी को बहुत योग में विश्वास था। अनेक हम उदाहरण सुनते हैं जब भी कोई यज्ञ में प्रॉब्लम आती थी, कोई समस्या आती थी तो दादी कहती थी योग भट्टी करो। लेकिन मुझे एक चीज और जानना है कि इसमें योग भट्टी तो चलो ठीक है लेकिन क्या रात्रि योग भी मधुबन में चलता था?
एक्चुअली कई चीजें ऐसी होती थी यज्ञ में कि जिसका लगभग सभी मधुबन निवासियों को पता नहीं होता था। हम थोड़ा सा नजदीक में थे तो कभी कभी समझ में आता था लेकिन हम लोग भी डिटेल में पूछते नहीं थे, लेकिन दादी दीदियों का लक्ष्य यही होता था कि और दादी को विश्वास होता था कि योग बल से ही हम इस चीज का निवारण कर सकते हैं। तो कई बार हमें ये नहीं बताया जाता था कि ये प्रॉब्लम है, कि कई बार लोग पूछते हैं ना कि मतलब हम सकाश कैसे दें, क्या हम उस व्यक्ति को सामने रखें, जो हम कहीं प्रॉब्लम है अभी यूक्रेन है में हमें सकाश भेजना है तो हम यूक्रेन को सामने रखें क्या, लेकिन ये चीज उस समय ऐसा नहीं कहा जाता था। मान लो बारिश नहीं हो रही तो हम ऐसे नहीं कि बारिश को सकाश देते थे लेकिन योग भट्टी रखते थे और उसका रिजल्ट दिखता भी था। सबसे पहली योग भट्टी मैं कहूँगा जो मैंने की यहाँ दीदी के सामने होते, तो योग भट्टी उसमें थी योग भवन जो आपने देखा होगा, आप पांडवन के जो अलग अलग छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स में एक योग भवन है तो मैक्सिमम वहाँ 100-150 लोग ही रह सकते हैं, अभी भी छोटा सा ही हिस्सा है। तो जब पहली हमारी 82 में योग भट्टी हुई थी तो 3 दिन की योग भट्टी थी और उसमें हम मधुबन निवासी करीब 22-25 थे जो वहाँ गए, वहाँ ही रहना था। और इस हमें जो मूली सुनाने के लिए भी रतन में दादी या मनोहर दादी आए थे, वहाँ अलग से मूली सुनाते थे। और उस समय ये था कि मौन में ही रहना है और जो भट्टी में नहीं है उनकी शक्ल नहीं देखनी है। और भट्टी में जो नहीं थे उनको भी कहा गया था कि अगर आपको वॉकिंग करना है तो नकेले साइड वॉक करो, और जो भट्टी में हैं वैसे तो छत पे वॉकिंग करें तो अच्छा है, फिर भी अगर बाहर जाना ही है तो देलवारा साइड जाएंगे, मीन्स पांडवन की तरफ नहीं आएंगे, योग भवन के उस तरफ ही घूमने जाएंगे, वॉकिंग करने जाएंगे। और सभी उस समय फुल मौन में रहे थे, किसके साथ बात करने, सभी तो अंदर भट्टी में थे तो किसी के साथ बात करने का नहीं होता था। केवल दो व्यक्ति थे जो हम लोगों को देखते थे और बाहर भी जा पाते थे, वो थे हमें भोजन खिलाने वाले। तो भोजन परोसते थे उस समय, वो भी खुद हमें, वो भी बहुत कम भोजन खाते थे हम, और वो अपने थाली में डाल देते थे, हम लोग पूछते भी नहीं थे कि यह खाना है क्या है या क्या नहीं, वो सब नहीं। ऑटोमेटिकली हम कट ऑफ ही थे, इन द सेंस किसी से हमारे कनेक्शन नहीं था जो भट्टी में नहीं है उनसे। और आपस में भी हम लोग बात नहीं करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास व्यक्तवाणी का बुक होता था, हम पढ़ते थे, बाकी टाइम योग करते थे। योग उसके लिए भी कोई कॉमेंट्री या कुछ ऐसे गीत वगैरह ज़्यादा नहीं होते थे, गीत इसलिए होते थे हाफ एन आवर में एक बार एक गीत बजता था और कोई बीच में म्यूजिक वगैरह नहीं बजता था। और केवल आज सवेरे का ये लक्ष्य है, शाम का ये लक्ष्य है, वो केवल एक कागज पे चिपका हुआ रहता था, वो लिखा हुआ रहता था, वो हम पढ़ लेते थे, अदरवाइज हमें किसी से कोई कनेक्शन नहीं था। तो वो भट्टी का जो अनुभव था, बहुत सारे भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने पहली बार इतना चुप करके जीना सीखा, तो ऐसे अच्छे अनुभव थे। उसके बाद दूसरा, एक बाबा के कमरे में ही सवेरे 3 बजे से रात्रि 11 बजे तक बैठी रही, उसमें मुझे याद है कि हर एक को केवल 1 घंटा ही करना था, लेकिन सभी को करना कंपलसरी था। तो मुझे याद है कि मेरा टर्न और दादी का टर्न 11 से 12 दिन में था जी। तो निश्चित है दादी के साथ टर्न है तो दादी के कारोबार में शायद बिजी भी रहे, तो कंपलसरी मैं टाइम पे पहुंचना भी होता था और दादी भी टाइम पे आके पलती लगा के बैठ के योग करते थे और मोस्टली आते थे, कोई एक दिन मिस हो जाए या लेट हो जाए। तो योग का जो इम्पोर्टेंस है और योग का आउटपुट है वो दादियों को दिखता भी था, और अगले दिन या 1-2 दिनों में दादी हमें बता देते थे कि जिस कारण से योग भट्टी रखी थी वो सफल हुआ। तो मुझे याद है कि मेडिटेशन हॉल में जो नाइट भट्टी है, मोस्टली मेडिटेशन हॉल में रात भर की भट्टियाँ होती थी जो पांडवपुर में मेडिटेशन हॉल है, और सभी करते थे मोस्टली, कोई बीच में 1-2 घंटा जाके सो के वापस आके, लेकिन अदरवाइज भट्टी फुल
जी जी भाई जी।
और अगले दिन थोड़ा हल्का रहता था
जी 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 जी। कई बार हम सुनते हैं भाई साहब कि जब बड़ी दादी कभी विदेश यात्रा पर जाती थी तो मधुबन में बहुत भव्य आयोजन होता था। आजकल तो खैर विदेश जाना आना थोड़ा कॉमन हो गया था, लेकिन शुरुआती दिनों में बहुत भव्य, बहुत ज्यादा वो दृश्य सामने कई बार आता है। क्या होता था जब दादी विदेश जाती थी या विदेश से आती थी तब?
वैसे तो विदेश जाना, जैसे आपने बोला, कितना कोई बड़ी बात नहीं थी, और दादी यहाँ पहले भी जा चुकी थी बाबा साकर बाबा के समय में भी, और उसके बाद 77 में दादी विदेश यात्रा पर गए यूके और अमेरिका में, लेकिन उस समय भी विशेष ध्यान रखा गया। लेकिन हम लोग मोस्टली छोटा परिवार होता था और उस समय ऐसा होता था कि हम कोई बड़ा खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सेलिब्रेशन अवश्य करेंगे। नहीं, जैसे आपने देखा, मुझे याद है कि आज कल तो क्या है, बहुत महंगे हार आ जाते हैं ना, तो लोगों का ध्यान जाता है उस भाव से, लेकिन हम आपस में करते थे। तो मुझे याद है कि हम भावना बेन जो न्यूयॉर्क में न्यूजीलैंड में है, उनका समर्पण समारोह था, तो भी जो यहाँ मुकुट की तरह पहना था वो फूलों का हार का ही था। तो इस प्रकार से मानो बहुत खर्चा न करके हम आपस में सेलिब्रेशन अवश्य करते थे। तो कोई डांस करेगा, कोई आपस में वाद विवाद करेगा, कुछ इस प्रकार की चिट चैट होते था, लेकिन सेलिब्रेशन अवश्य होता था। आज हमारे राम आत्म प्रकाश भाई टोली वाले हैं, बाबा राम भाई अपना सुखदम संभालते हैं, आपस में वो टलू मटलू करके हंसी आपस में करते थे, नाटक करते थे। हमारे सूर्य भाई भी काफी लिखते भी थे ड्रामास, और रामश्लोक भाई सूर्य भाई के ड्रामास भी मशहूर हैं। स्वर्ग में एक सीट खाली का उनका बहुत अच्छा मशहूर है। तो ऐसे दादी जी जब जाते थे तो मोस्टली हम एक बस भर के स्टेशन आबू रोड तक जाते थे उनको सीएफ करने के लिए। अच्छा। ऐसे रिसीव करने के लिए भी थोड़े से भाई बहने जाते थे, और बाकी हम लोग आपस में यहाँ तैयारी करके देते थे। मोस्टली दादी जब जाते थे तो हम आपस में मुन्नी बहन और हम लोग कुछ लोग आपस में बैठ के राय करते थे कि हम क्या करेंगे। तो करना क्या होता था, साड़ियों से सजा लिया कुछ है ना, और आपस में कुछ खेल पाल कर लिया, और टोली कुछ ऐसे अलग से बना दी, जो जो अलग से होता था वही सेलिब्रेशन होता था। अदरवाइज भोजन तो हमें रोज खाना है, और आज हम हाल में खाएंगे तो हमारे लिए वो सेलिब्रेशन हो जाता था। तो इतना था कि हम बिना खर्चे लेकिन परिवार या अपनापन वो सेलिब्रेट अवश्य करते थे। मुझे याद है जब दादी जी पीस अवार्ड लेके आए थे, आई थिंक 86 था, तो 86 में था, तो हमने वहाँ ओम शांति भवन में सजाया था, और अभी भी उसके कुछ वीडियो शॉर्ट्स होंगे, और पृथ्वी सजाई थी, और पृथ्वी वो जो आयरन रॉड से पृथ्वी बनाई थी, और उसको हमने कपड़े से कलर कवर करके और कलर वगैरह करके और उसके ऊपर एक स्टेज बना दी थी। तो ऐसे लगा कि पृथ्वी पर दादी बैठे हैं। तो दादी जी आए थे और पृथ्वी पर उनको खड़ा किया, दादी ने झंडा लहराया, और फिर बाद में दादी उस पृथ्वी पर ही वहाँ बैठने का सिस्टम था, वहाँ बैठे थे। तो आपस में थे, कारपेंटर अपना सेटिंग कर देता था, गीत बजाने गाने वाले अपना सेटिंग करते थे, कुछ आसपास के अहमदाबाद के बच्चे कुछ डांस करने के लिए आ जाते थे। तो इस प्रकार मीन्स कम खर्च में जो आते थे उनको मधुबन की पालना मिल जाती थी, उनको उस बात की खुशी थी कि हमें मधुबन जाने का बहाना मिला है, और हम आपस में हंस खेल लेते थे। तो सेलिब्रेशन होता था रॉयल तरीके से, अपने परिवार के तरीके से भी, रॉयल से भी।
वैसे तो जानने का और सुनने की बहुत अभिलाषा है, लेकिन समय हमें इशारा कर रहा है, आप सब काफी देर से बैठे हैं, लेकिन पहुंच गए दीदी दादी के साथ, सब पहुंच गए सुनते सुनते, अच्छा लगा सबको। तो एक हाथ की ताली भाई साहब के लिए, और एक बार पुनः भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम सबको वो यज्ञ की संस्मरण ताजा करा दिए, कैसे दीदी दादी उस समय पालना करते थे, किस तरह से यज्ञ को चलाए। तो आपने अपना कीमती समय निकाल करके हम सबको वो यज्ञ की सैर कराई।
ये तो ऐसा ना भागवत है जैसे कि
जी 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 जी।
मुझे याद है कि जब दादी जी बाहर जाते थे कहीं, जैसे अभी बाहर जाने की बात आई, तो पिछले से मनोहर दादी जी मोस्टली और भी कई अपने संदेशी दादी वगैरह आ जाते थे यहाँ, तो वो सुनाते थे कहानियाँ। तो हम लोग बोलते थे आज रात को 10 से 12 या रात को 8 से 10 भागवत होगा। तो बाबा के जीवन कहानी से संबंधित है, बाबा के साथ के अनुभव सुनाते थे, आज हम दीदी दादी के सुनाते
हैं। जी 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 जी। तो आपका दिल से धन्यवाद भाई साहब। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर ये आज की सभा यहीं समाप्त होगी।